ओम शांति। राजयोग अर्थात खुद पर राज्य करना सीखना, मन पर राज्य, कर्म इंद्रियों पर राज्य। आजकल बहुत बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारा मन सोचना बंद नहीं करता है, सोचता ही जाता है। बैठे ऑफिस में हैं, घर की बात याद आ रही है, बैठे घर में हैं, काम की बात याद आ रही है। मन के ऊपर संयम, मन के ऊपर नियंत्रण, ये अनुभव नहीं होता। और ही लोग आजकल कहते हैं मन बोलना बंद नहीं करता, ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचता है। जब मन ज़्यादा सोचेगा तो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डाउन होगी। तो हमारी जो थॉट्स हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, इसका कनेक्शन है। जब हमारा श्रेष्ठ चिंतन चल रहा है तो संकल्पों की गति अपने आप धीमी होगी, लेकिन जब व्यर्थ चल रहा है, ये क्यों, ये कैसा, ऐसा वैसा ये चल रहा है, तो गति ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट हो जाती है। जब संकल्पों की गति फास्ट होती है तो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता। जैसे विजुअलाइज करें, आपकी गाड़ी बहुत फास्ट स्पीड पे चल रही है और अचानक सामने से कोई आता है, तो कभी कभी हम टाइम पर गाड़ी को रोक नहीं सकते और कहीं ना कहीं थोड़ी सी टक्कर लग जाती है। इसी तरह हमारा मन बहुत फास्ट गति से चल रहा है और सामने से आके किसी ने कुछ कह दिया, एक वर्ड कह दिया, उस समय मेरा अपने मन पर कंट्रोल अगर नहीं रहा तो फिर मेरा अपने शब्दों पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा, और फिर मैंने ऐसा कुछ कह देना है जो बाद में मैंने कहना है, मेरे को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, मैं 2 मिनट चुप रह सकती थी, कहना भी था तो थोड़ा सा प्यार से कहना चाहिए था, धीमा कहना चाहिए था। बहुत कुछ हम सोचते हैं, वो सेम है जैसे हम कहते हैं गाड़ी सामने से आई थी, मुझे थोड़ा सा मोड़ लेना चाहिए था, मुझे ब्रेक जल्दी लगा लेनी चाहिए थी। ये सब हो सकता था, लेकिन ये तब होता अगर इसकी गति थोड़ी धीमी होती। जब फास्ट गति होती है तो मन पर कंट्रोल नहीं रहता, और जब मन पर कंट्रोल नहीं रहता तो फिर मुख पर, शब्दों पर भी कंट्रोल नहीं रहता। हम सब ने अनुभव किया होगा कि बोलने के बाद हम दूसरे को कहते हैं, मेरा ये कहने का भाव नहीं था, मेरे मुख से निकल गया। किस किस के मुख से कुछ कुछ निकल जाता है, कभी कभी उठाओ बात तो निकल जाता है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। तो जब हम कहते हैं मेरे मुख से निकल गया, मतलब मेरा मेरे मुख पर कंट्रोल नहीं है। तो पहले यहाँ के गुलाम, फिर यहाँ के गुलाम, कभी कभी जो सुनना नहीं चाहिए वो भी सुन रहे हैं, मालूम है ये नहीं सुनना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है, मुझे क्यों सुनना है वो, लेकिन टेस्टी लगती है वो बातें, चटपटी है, सुनना नहीं चाहिए तो भी सुन रहे हैं। 1 घंटे के बाद कहते ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया, क्या सुना मैंने, सुनने का कोई फायदा नहीं था, ये सुनना नहीं चाहिए था लेकिन तू भी सुन लिया, बोलना नहीं चाहिए था तो भी कह दिया, कभी कभी खाना नहीं चाहिए था तो भी खा लिया। खाते खाते कहते हैं मीठा तो मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन क्या करें, मीठे के बिना तो मेरा, मीठा देखकर तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मतलब मेरा मुख पर, कानों पर और आंखों पर तो फोन से, टीवी से, दूसरों से क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो इस समय हम स्वराज्य से हटकर, स्वराज्य मतलब स्व पर राज्य, हम स्वराज्य से हटकर अपने मन और कर्म इंद्रियों के क्या बन गए हैं, गुलाम। और राजयोग वो एक ऐसी विधि है कि हमें गुलामी से वापस आजादी दिलाकर हमें स्वराज्य का अनुभव कराती है, क्योंकि जब तक स्वराज्य नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। राम राज्य लाना है ना, लाना है, नहीं लाना, लाना है। लेकिन राम राज्य आएगा कब, जब आएगा जब हर नर और नारी मर्यादा सभी आ सकता है। इसीलिए हम राजयोग सीखते हैं और राजयोग सीखने के लिए शक्तियों को है, एक मैं कौन वो कौन, और फिर राजयोग सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, उसके साथ कनेक्शन जोड़कर खुद की शक्ति को क्या करना, बढ़ाना। जैसे कि एक पावर हाउस के साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर देना, तो विजुअलाइज करें बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब बैटरी खुद खुद को तो चार्ज नहीं कर सकती है, तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट जब हम कर लेते हैं, बैटरी को कुछ करना नहीं पड़ता। उसके बाद बैटरी को क्या कर दो, सिर्फ कनेक्ट कर दो। बैटरी वहां पड़ी हुई है, बस कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने से बैटरी क्या होती जाएगी, अपने आप चार्ज होती जाएगी। तो आज के पहले सत्र में हम ये समझेंगे कि मैं कौन, और कल मॉर्निंग का जो आपका सत्र होगा उसमें हम समझेंगे वो कौन। तो पहले सत्र में बैटरी कौन, दूसरे सत्र में पावर हाउस कौन, और फिर तीसरे सत्र में बैटरी को पावर हाउस के साथ कैसे कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज करना है, क्योंकि इस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी दुनिया कह रही है स्ट्रेस, गुस्सा, दर्द, चिंता, और अब तो डिप्रेस्ड, डिप्रेशन, ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और ये सारी चीजें जो बढ़ती हैं, शरीर के रोग बढ़ते हैं, और जब ये चीजें बढ़ती हैं तो रिश्तों में गांठें आती हैं, और जब ये सब कुछ होता है तो सृष्टि जो बन गई है वो बन जाती है। लेकिन अब उस सृष्टि का अगर परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन सिर्फ बाहर से नहीं हो सकता है। परिवर्तन कहां से करना पड़ेगा, परिवर्तन कहां से करना पड़ेगा? अगर आपके घर में चार लोग रहते हैं लेकिन उस घर में दुख है, दर्द है, शरीर की बीमारी है, कलह कलेश है, तो क्या घर को रेनोवेट करने से सब ठीक हो जाएगा? हो सकता है? नहीं। किसको चेंज करना होता है? घर को नर्क से स्वर्ग बनाना है तो किसको चेंज करना होता है? घर में रहने वालों के संस्कारों को। इसी तरह सृष्टि पर इतना कुछ है, इतना कुछ है, खुशी नहीं है आजकल, कितनी भी बड़ी सभा हो, सिर्फ अगर स्टेज से उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस को खुशी चाहिए, एक सेकंड सोचे बिना, एक सेकंड भी रुके बिना, अगर 5000 की सभा है तो 5, 10 की सभा है तो 10, एक सेकंड रुके बिना हाथ उठाते हैं, हमें खुशी चाहिए। चाहिए मतलब नहीं अनुभव हो रही ना, फिर चाहिए। तो इतनी मेहनत की, इतना कमाया, इतने साधन पाए, इतना अच्छा घर बनाया, और सब कुछ करने के बाद हाथ उठाना पड़ रहा है कि खुशी चाहिए। फिर पूछो शांति चाहिए, फिर हाथ उठाते हैं। फिर पूछो प्यार चाहिए, तो फिर हाथ उठाते हैं। तो फिर हम क्या बन गए, चाहिए चाहिए वाले बन गए। हम चाहिए चाहिए वाली संस्कृति के नहीं हैं। हम कौन सी संस्कृति के हैं? हम आदि सनातन देवी देवता संस्कृति के हैं, देवी देवता संस्कृति के हैं। तो देवी देवता मतलब देने वाली आत्मा, पर कलयुग में आते आते हम कौन से बन गए, लेने वाली आत्मा बन गए हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, हम भूल गए कि मैं कौन हूं। अगर एक बच्चा है, बहुत धनवान घर में पैदा हुआ है, उसके माता पिता का जो है वो सब कुछ उस बच्चे का है, लेकिन वो बच्चा ही भूल गया वो किस घर में पैदा हुआ है, वो बच्चा भूल गया किसका बच्चा है, तो वो सड़क पे जाके बोलेगा मुझे एक रुपया दे दो, मुझे खाना खाना है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि वो भूल ही गया ना कि वो किसका बच्चा है। इसी तरह हम भूल ही गए हम कौन हैं, हम भूल ही गए कि पवित्रता, शांति, सुख, ये तो मेरा संस्कार है, हम भूल गए। तो हम कहते एक मिनट शांति दो, बोलते हैं कि नहीं एक मिनट, वो वैसा ही है जैसे कोई जाके बोले एक रुपया दो, मेरे पास चाय पीने को भी पैसे नहीं है। एक मिनट शांति चाहिए, एक मिनट तो प्यार से बात करो ना। खुशी आती है घर में तो डर लगता है, कहते ज्यादा खुश मत होना, चली जाएगी, किधर पहुंचे, कैसे पहुंचे, सिर्फ क्योंकि भूल गए कि हम कौन हैं। तो सबसे पहली चीज खुद, आज खुद को पहचानना, खुद से परिचय करना, खुद से एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ना शुरू करना और खुद के जो मूल संस्कार हैं उनको कर्मों में लेकर आना, तो हम ऐसे की जगह क्या बनने लग जाएंगे, फिर हम ऐसे बनने लगेंगे। आज अगर कोई आपसे इस पूरे कैंपस में पूछे कि आप कौन हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम अपना विजिटिंग कार्ड ही निकाल कर बाहर दे देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? और उस विजिटिंग कार्ड पे क्या क्या लिखा होता है? पहले हमारा नाम लिखा होता है, फिर उसके बाद क्या लिखा होता है और क्या क्या लिखा है? मेरे को याद ही नहीं विजिटिंग कार्ड कैसा होता है, मेरे पास है नहीं ना बहुत सालों से। आपके विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? पहले मेरा नाम लिखा होगा और क्या लिखा होगा? क्वालिफिकेशन लिखी होगी, वेरी गुड, और क्या लिखा होगा? हाँ, इस समय का आपका रोल क्या है? विजिटिंग कार्ड तो सबसे ज्यादा उसी के लिए होता है। आपका रोल क्या है? आप किस संस्था से बिलोंग करते हैं? आप किस मीडिया हाउस से बिलोंग करते हैं? आपका फोन नंबर एड्रेस होगा तो उससे पता चल जाएगा आप किस शहर को बिलोंग करते हैं। और वो एक छोटे से कागज के अंदर हम अपना परिचय दूसरे वाले को दे देते हैं, कहते मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से आया हूं और मैं ये करता हूं और मैं ये पढ़ा हूं। ये सब कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ मेरा है, ये मैं नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहली चीज उसको एक नाम मिलता है, लेकिन कुछ दिनों तक वो बच्चा बिना नाम के भी होता है। फिर कोई उसको किसी नाम से पुकारता है, कोई उसको किसी नाम से पुकारता है, हर एक अपना अपना प्यार से उसके लिए नाम बना लेता है। फिर उसको एक ऑफिशियल नाम मिलता है, कई लोग आगे जाके अपना नाम बदल भी सकते हैं। वो सिर्फ एक क्या है वो नाम? वो नाम क्या है? वो नाम एक लेबल है जिससे हर एक मुझे संबोधित करेगा। और इसीलिए भारत की संस्कृति में नाम बहुत ध्यान से रखा जाता है। अर्थवाचक नाम होता है, ऐसा अर्थ होता है जिससे हर एक जब उस नाम का उच्चारण करेगा तो एक बहुत हाई एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। इतने अच्छे से सोचे हुए नाम हमारे देश में रखे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो आपके नाम का मतलब क्या है, तो एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल नाम का मतलब होता है, क्योंकि नाम सारे जीवन में सबसे ज्यादा हम सुनेंगे, सबसे ज्यादा उच्चारण होगा हमारा नाम। लेकिन वो नाम मेरा नाम है, मैं नाम नहीं हूं। फिर उस बच्चे को क्या मिला? उस बच्चे को माता पिता मिले, परिवार मिले, धीरे धीरे रिश्ते बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। पहले माता पिता मिले, कुछ सालों के बाद वो बच्चा खुद माता पिता बन गया। इतने रिश्ते बढ़ते गए, लेकिन इस पूरे जीवन काल में अगर आप चेक करें, रिश्ते मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और इस जीवन की यात्रा पे कुछ कुछ रिश्ते क्या होता है, छूटते भी जाते हैं। कुछ मिलते हैं, कुछ छूटते हैं, कुछ बदलते हैं। तो वो रिश्ते मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं छूटना मिलना नहीं हूं, वो मेरे रिश्ते हैं। दो बातों में फर्क है। मैं पति, मैं पत्नी, मैं बच्चा, मैं भाई, मैं बहन, ये सिर्फ हमारी भाषा बन गई है। वो एक्चुअली माय रिलेशनशिप है, वो आई रिलेशनशिप नहीं है, वो मैं नहीं हूं। मैंने उस रिश्ते को अपनी आइडेंटिटी बना लिया कि ये मैं हूं, वो मेरा रिश्ता है। आज है, कल हो सकता है कि यस, आज है। किस किस ने इस जीवन की यात्रा में कुछ रिश्ते खोए हैं? खोए हैं मतलब दूसरी आत्मा आगे गई अपनी यात्रा के ऊपर, तो हमारा रिश्ता तो छूटेगा ना, अभी हमारा रिश्ता उनके साथ नहीं है। तो रिश्ते भी टेम्पररी हैं, आज है कल नहीं है। तीसरी चीज हमें क्या मिला? हमने एजुकेशन पाई। एक छोटे बच्चे को देखो, गोदी में जब एक बच्चा होता है और हम उसको मार्केट में, दुकान में, किसी की गोदी में उसके बच्चे को देखते हैं, तो वो बच्चा बहुत अट्रैक्टिव होता है। हर एक एक बच्चे की तरफ क्या होता जाता है, खिंचता जाता है। फील किया सबने, बच्चे की तरफ खिंचते हैं। क्यों खिंचते हैं हम बच्चे की तरफ? अनजान लोग भी उस बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, बच्चा भी मुस्कुराता है। बच्चा अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो भी अनजान लोगों को देखकर मुस्कुराता है, दूसरे लोग भी उसको देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। क्या है उस बच्चे के पास जो इतना अट्रैक्टिव है, इतना आकर्षित करता है? क्या है उस बच्चे के पास, क्यों वो इतना आकर्षित करता है? क्यों कुछ सालों के बाद वो जो आकर्षण उस गोदी में था, अब वो आकर्षण क्या होने लगता है? धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कौन सी चीज का आकर्षण है? कौन सी चीज का? जो मेहमान आए हैं उनके लिए है। कौन सी चीज का आकर्षण है? उस बच्चे के पास अभी मैं नहीं आया है, मैं फलां फलां हूं, ये अभी तक उस बच्चे के पास नहीं आया है। उस बच्चे के लिए सब इक्वल होते हैं, उस बच्चे के लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। उस बच्चे के लिए जो भैया गाड़ी चला रहा है या जो उस कंपनी का चेयरमैन है, उस बच्चे के लिए दोनों एक बराबर होते हैं। वो सबके साथ इक्वल मुस्कुराता है, वो सबके साथ इक्वली खेलता है, क्योंकि उसको मैं लेबल नहीं है और उसको ये है ये भी लेबल नहीं है। तो इसको कहेंगे ईगोलेस स्टेज, ईगोलेस, अहंकार नहीं है, प्योरिटी है। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा स्कूल जाने लगता है, धीरे धीरे उसको किसी चीज का अवार्ड मिलता है, वो कुछ बनता है, फिर वो इस क्लास में जाता है, उस क्लास में जाता है, और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या आने लगते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं इससे बेटर हूं, मैं इससे ज्यादा हूं, मैं इससे कम हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूं। ये सारे लेबल्स लगते जाते हैं और जो वो बच्चे की प्योरिटी थी वो प्योरिटी क्या हो जाती है। किस किस के पास अपने बचपन की फोटो है, एकदम गोदी वाली फोटो, आज आके जरूर देखना और देखना ये मैं और अभी ये मैं, इतना फर्क हो गया, क्या आया ऊपर से, सिर्फ लेयर्स 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 ऑफ मैं। तो ये जो जीवन की यात्रा है इसमें हम बहुत कुछ अक्वायर करते हैं। पहले हम स्कूल जाने लगते हैं, फिर हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, फिर हमें एक डेजिग्नेशन मिलती है और फिर एक जीवन की यात्रा है। डेजिग्नेशन क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक दिन वो डेजिग्नेशन क्या हो जाती है, छूट जाती है कि नहीं छूट जाती, खत्म हो गया प्रोफेशन, रिटायर हो गए। लेकिन आजकल विजिटिंग कार्ड रिटायर होने के बाद भी कायम रहता है और विजिटिंग कार्ड के ऊपर वही का वही डेजिग्नेशन रहता है और छोटा सा रिटायर्ड लिखा होता है या छोटा सा एक्स लिखा होता है ताकि कोई देखे ही नहीं उसको। क्यों नहीं देखे, क्योंकि मैं वो जिस रोल पे था उसके लिए सब मुझे उस नजर से देखते थे, वो औधा मेरे लिए सम्मान लाता था। आज अगर मैं वो औधा नहीं हूं फिर मैं क्या हूं, इसीलिए हम उस आइडेंटिटी को क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। वो औधा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेरा रोल है, वो मैं नहीं हूं। रोल चेंज होता रहेगा, आज रोल है कल रोल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए रिश्ते भी आते और जाते हैं, रोल भी आता जाता है, धन संपत्ति भी आती है एक दिन खत्म हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज लास्ट कौन सी खत्म होगी, कौन सी खत्म हो जाएगी, लास्ट चीज कौन सी खत्म होगी, कौन खत्म होगा, कौन खत्म होगा, मैं खत्म हो जाएगा। जो रोज क्लास करते हैं वो आंसर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सबने सोचना है, आप पहले बोल के दूसरे को सोचने का चांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्या खत्म होगा, क्या खत्म होगा, तो हमें लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं खत्म हो जाऊंगा। क्या खत्म हो जाएगा, मेरा शरीर। अगर आज आप चल रहे हैं बाहर नाश्ते की तरफ और चलते चलते पैर थोड़ा सा मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, दर्द करने लगता है, आप कहते हैं क्या मैं पैर दर्द हो रहा हूं, बहन आप कहेंगे मैं पैर दर्द हो रहा हूं, नहीं, क्या कहेंगे, मेरा पैर दर्द हो रहा है। चाकू यूज करते करते हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि मैं शरीर दर्द हो रहा हूं, नहीं, मेरा शरीर दर्द हो रहा है, ये मेरा है, मुझे पता है ये मेरा है, लेकिन सारा दिन में याद नहीं रहता है, इसलिए सुबह सुबह शीशे में देखते हैं और कहते हैं मैं आज कैसा दिख रहा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं। कौन दिख रहा है शीशे में, शीशे में कौन दिख रहा है, मेरा शरीर दिख रहा है। तो ये नहीं कहना मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं मोटा मैं पतला नहीं होता है, कौन मोटा पतला होता है? मेरा शरीर। मैं बीमार हो गया भी सच नहीं है, मेरा शरीर बीमार है। मैं बीमार तब होता हूं जब यहां कुछ होता है, तब मैं बीमार है। जब यहां कुछ होता है तो मेरा शरीर बीमार है। लेकिन इतने सालों से हमने याद ही नहीं किया कि ये मेरा शरीर है। हमने इसको मैं समझा, रिश्तों को मैं समझा, औधे को मैं समझा, सब कुछ को मैं समझा, और जो मैं है उसको भूल गया। एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट आपको आज मिलता है। बहुत आजकल आप गिफ्ट देखो, बड़े अच्छे अच्छे डब्बे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रैपिंग पेपर होते हैं, रिबन्स भी इतनी प्यारी होती हैं, लेबल इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इतने महंगे होते हैं कि लगेगा यही गिफ्ट है। लेकिन अब एक मिनट आंख बंद करो और धीरे धीरे इस गिफ्ट को खोलते हैं। उस गिफ्ट पे लगे हुए जो लेबल्स है ना, वो है हमारे सारे रोल्स एंड पोजिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मिनट के लिए उस लेबल को उतार कर साइड पर रखिए कि वो सिर्फ मेरा लेबल है। और फिर उस गिफ्ट पे बहुत सारी प्यारी प्यारे रंगों की रिबन्स होती हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है मेरी रिश्तों की डोरी, ये है मेरे रिबन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मिनट के लिए वो रिबन को भी उतार कर साइड पर रखते हैं। और फिर उस गिफ्ट पर होता है एक बहुत प्रिटी रैपिंग पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है वो सारे सुंदर सुंदर कपड़े जिससे मैं अपने आप को ढकती हूं, शरीर को, उसको भी उतार कर एक मिनट साइड पर रखिए। और अंदर तो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉक्स है, चाहे वो चांदी का डब्बा है, चाहे वो सोने का डब्बा है, चाहे वो एक लकड़ी की कार्विंग का बहुत प्यारा डब्बा है। तो हम उस डब्बे को देखते हैं और हम कहते हैं कितना प्यारा गिफ्ट दिया है उन्होंने। वो डब्बा है, अभी हम गिफ्ट तक नहीं पहुंचे हैं। अब उस डब्बे को खोलिए और उस डब्बे के अंदर एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत वैल्यूबल एक डायमंड पड़ा है। गिफ्ट वो डायमंड है। डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, रैपिंग पेपर, स्ट्रिंग्स, लेबल, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ उस डायमंड को डेकोरेट करने वाली चीजें हैं। वो डायमंड गिफ्ट है, हमारी जीवन वो डायमंड है, वो बॉक्स, रिबन्स और लेबल्स नहीं। वो बॉक्स, रिबन्स और लेबल्स सिर्फ इस जीवन की यात्रा पर एंजॉय करने के लिए मिले हैं, रोल निभाने के लिए मिले हैं, रिश्ते दूसरों का ध्यान रखने के लिए मिले हैं। लेकिन मैं आत्मा डायमंड गिफ्ट हूं ये मैं भूल गई, तो मैं अपनी चमक उन लेबल से, डब्बे से और उन स्ट्रिंग से मांग रही हूं कि मुझे खुशी दो, मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो। ढूंढ रहे ना इन सारी चीजों के अंदर, किस किस को पता है मैं आत्मा हूं? सुना तो है ना कभी कभी, कहीं ना कहीं तो सुना था कभी कि मैं आत्मा हूं, लेकिन सारा दिन में याद नहीं रहता। जब हम कोई देह को त्याग करता है वहां जाते हैं तो सुनते हैं आत्मा है, और या फिर भूत की पिक्चर देखने जाते हैं तो सुनते हैं आत्मा है, बाकी सारा दिन मैं आत्मा हूं ये तो याद रहता नहीं है। तो ये शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये शरीर जड़ है, एक सेकंड में जब इसके अंदर की चेतनता निकल जाती है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। एक हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी है आज, तो डॉक्टर नर्स को क्या कहता है, सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर आओ जल्दी हॉस्पिटल, उसमें ओटी के अंदर। तो सिस्टर और वो वार्ड बॉय वो मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाते हैं, उनकी सर्जरी होती है, हो सकता है कुछ ठीक नहीं हुआ, तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। जाने के टाइम क्या बोला था, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। बाहर भेजने के टाइम क्या बोला, सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। अब उनके जो परिवारजन हैं, उनके जो बच्चे हैं, एक दिन पहले वो डॉक्टर से कह रहे थे, डॉक्टर सर्जरी बहुत अच्छे से करना, मेरे पापा को बचा लेना, मेरी मम्मी को बचा लेना। और अब आकर वो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? एक दिन पहले वो मम्मी थी, पापा था, और अगले दिन वो क्या बन गया, बॉडी बन गई, कि हम शरीर को घर कब लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शक्ति उस शरीर को चला रही थी, जिस शक्ति के साथ हम बात करते थे, हंसते थे, खेलते थे, महसूस करते थे, फीलिंग्स क्रिएट करते थे, वो उस शरीर में अब नहीं है। तो हम कहते हैं बॉडी को घर कबड़े के चाट सकते थे। तो मैं आत्मा वो शक्ति हूँ। जब इस शरीर में हूँ तो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ। जब मैं इस शरीर से निकल जाती हूँ तो ये शरीर सिर्फ शरीर है, वो शव है। और जब वो शरीर को ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए तो देखने वाले कहते हैं अर्थी जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? अर्थी जा रही है, अरथी जा रहा है। रथी कहाँ है? ये अरथी है, रथ है सिर्फ वो, और रथी कहाँ गया? रथी चला गया। तो ये अरथी जा रहा है। ये सब हम शब्द यूज करते हैं लेकिन कभी भी रुककर सोचते नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। तो वो रथी, रथ क्या है? ये शरीर। और वो रथी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन, ह्यूमस शब्द से आता है, ग्रीक में उसको मिट्टी कहते हैं। तो ह्यूमस मिट्टी का बना हुआ शरीर, मिट्टी का बना और मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी। क्या है आत्मा? बोलिए, अजर अमर अविनाशी। अब अपने आप को बोलिए मैं आत्मा। बोलिए मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। मैं कभी नहीं मरती। सारी दुनिया मरने के डर से चल रही है। मृत्यु, मृत्यु का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मृत्यु का क्या कॉन्सेप्ट है? ये थोड़ी कि हम मर जाते हैं। मृत्यु मतलब एक शरीर छोड़ना और क्या करना। आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, क्या करेगी? यहां हाथ रखो एक बार, हम यहां हैं, हम यहां से इस देह को त्याग करेंगे और यहां से निकल कर अगले परिवार में जाकर मां के गर्भ में प्रवेश करेंगे और फिर कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होगा। जब तक वो आत्मा उस गर्भ में जाकर उस शरीर में प्रवेश नहीं करती तब तक वो सिर्फ एक फ्लैश है, वो सिर्फ एक शरीर है। जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है फिर मूवमेंट स्टार्ट होगी, फिर बॉडी के हर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होगी। तो इसीलिए आत्मा की प्रवेशता के बाद वो बच्चा बनता है, तब तक वो सिर्फ एक फीटस है, वो सिर्फ एक शरीर है, फ्लैश है जो डेवलप होने वाली है। इसीलिए मैं आत्मा अभी इस शरीर में हूं, एक सेकेंड में इस शरीर को छोड़ूंगी, अगले शरीर में जाऊंगी, फिर उधर रिश्ते बनेंगे, उधर वो डब्बा मिलेगा, फिर रैपिंग पेपर मिलेगा, फिर रिबन्स मिलेंगी, फिर लेबल्स मिलेंगे, फिर 100 साल जिएंगे, फिर वो सब छूटेगा, फिर मैं आगे जाऊंगी। तो मैं आत्मा तो एक बहुत लंबी यात्रा पर हूं। इस लंबी यात्रा पर मेरे साथ क्या चलेगा? क्या क्या पीछे रह जाएगा जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी? लिस्ट बनाए छोटी सी, क्या क्या पीछे रहता है जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। सबसे पहले तो शरीर ही पीछे रह गया, और क्या पीछे रहा बताओ। लिस्ट ये रोज याद रखना बहुत जरूरी होता है। मेरा क्या क्या शॉर्ट टर्म है पीछे रह जाएगा, क्या क्या पीछे रह जाएगा? शरीर पीछे रहेगा, और रिश्ते रह जाएंगे, और रोल और पोजीशन खत्म हो जाएगा, धन संपत्ति पीछे रह जाएगी, इवन पढ़ाई साथ नहीं जाती है। आज आपने पीएचडी कर लियो लेकिन अगर एक सेकंड में आत्मा ने शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, उसके बाद फिर से एबीसीडी स्टार्ट होता है। बच्चा पढ़ाई अपने साथ नहीं लेके जा सकता है। फिर बच्चा क्या लेके गई वो आत्मा अपने साथ? दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, ना कुछ लेकर आए ना कुछ लेकर जाना है। ये राइट नहीं है। इन आंखों से जो दिखाई देता है ना लेकर आते हैं ना लेकर जाते हैं, लेकिन जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वो लेकर भी आते हैं और वो साथ में लेकर भी जाते हैं, और वो होते हैं आत्मा के संस्कार, आत्मा के कर्म। छोटे बच्चों को देख लो, अभी उन्होंने कोई कर्म नहीं किया है लेकिन फिर भी उनके संस्कार कितने अलग अलग होते हैं। होते हैं कि नहीं संस्कार? कोई बच्चा ज्यादा रोता है, कोई बच्चा ज्यादा हसमुख रहता है, कोई बच्चा बड़े आसानी से दूसरों के पास चला जाता है, कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे रहता है, कोई बच्चा अंधेरे में भी अकेला चला जाता है, कोई बच्चा अपने घर में अंधेरे में अकेला नहीं सो पाता है, कोई बच्चा अपनी सारी चीजें दूसरों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा दूसरों की भी उठा के अपने पास लेकर आ जाता है। किसने सिखाया उस बच्चे को ये सब? किसी ने सिखाया उस बच्चे को ये सब? ये उसके संस्कार है। ये संस्कार कहां से आए? ये संस्कार कहां से आए? ये संस्कार मैं आत्मा अपने साथ लेकर जाती हूं। अभी एक मिनट चेक करो, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मेरे संस्कार कैसे हैं? और अब मैं आत्मा यहां से शरीर छोड़ूंगी, बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा कैसा वाला होगा? हसमुख होगा या टेंशन वाला होगा? कैसा वाला बच्चा होगा? हसमुख होगा या टेंशन वाला होगा? ये मत बोलना वहां तो मैं बच्चा हूं हसमुख होऊंगा, या तो काम इतना ज्यादा ना उसकी टेंशन है। आप कारण कुछ भी ठहराओ, टेंशन तो संस्कार बन जाएगा ना। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे भी टेंशन में हैं, छोटे छोटे बच्चे हाइपर है। पेरेंट्स कहते हैं इतने हाइपर क्यों है? किस किस को लगता है कि जब हम बच्चे थे तो एक जगह पे बिठा दो तो बिठा दो, ये इधर दे दो तो दे दो, आज तो भागते रहते हैं उनके पीछे, भागते रहते हैं, हाइपर हो गए बच्चे। क्यों बच्चे हाइपर हैं? क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं, वो हम आत्मा ही हैं जो अभी हाइपर है। अभी हम हाइपर है ना, यहां से निकले, गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा पैदा हुआ, वो हाइपर है। कहते आजकल के बच्चे इतने गुस्सा क्यों करते हैं? बच्चे का क्या मतलब है? बच्चा ब्लैंक स्लेट थोड़ी है। अभी हम गुस्सा करते हैं, यहां से शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा पैदा होगा, गुस्से का संस्कार साथ लेकर आएगा। तो मैं आत्मा अपने संस्कार साथ लेकर जाती हूं। बच्चा पैदा हुआ, एक दो दिन के अंदर उसके जन्म पत्री भी बन जाती है। हम में से किस किस के पास जन्म पत्री है? कब बनी थी? जब बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया था अभी तक। अभी तो शायद नाम भी नहीं मिला था उस बच्चे को, वो जन्म पत्री बन गई। कैसे बनी जन्म पत्री? किस आधार से बनी जन्म पत्री? एक ही क्षण, एक ही शहर, एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे पैदा हुए, ग्रह तो वही थे, जन्म पत्री इतने अलग अलग क्यों है? दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक मिनट का फर्क है, मात पिता वातावरण सब सेम रहने वाला है पूरा जीवन, फिर भी जन्म पत्री बिल्कुल अलग है। क्योंकि जन्म पत्री अर्थात भाग्य, और भाग्य किस आधार से बनेगा? मैं आत्मा कौन से कर्म अपने साथ लाई हूं। तो कौन सी दो चीजें साथ जा रही है? कौन सी दो चीजें साथ जा रही है? मेरे कर्म और मेरे संस्कार। अगर हम दिन में दो बार कम से कम, एक बार सुबह एक बार शाम, अपने आप को सिर्फ ये याद दिला दे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट टर्म है, छूट जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये, क्योंकि ये मेरे जीवन की क्वालिटी अभी भी डिसाइड करता है, और जब आगे जाएगा तो ये मेरे साथ सिर्फ ये ही जाएगा। कौन जा रहा है मेरे साथ? कौन जा रहा है मेरे साथ? मेरे कर्म, मेरे संस्कार। और मेरा भाग्य कौन बनाता है? मेरे कर्म, मेरे संस्कार। अभी भी मेरा भाग्य मेरे कर्मों से ही बनता है, ऐसा नहीं कि ये आगे के लिए हो रहा है, अभी भी मेरा भाग्य मेरे कर्मों से ही बनता है और आगे भी मेरा भाग्य मेरे कर्मों से ही बनेगा। तो हमारा कंपस क्या होना चाहिए फिर जीवन जीने का? कहीं जाते हैं तो आजकल जीपीएस ऑन करके चले जाते हैं, जीपीएस बोलता जाता है, हम चलते जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता ज्यादा कुछ भी कि इधर टर्न करें इधर टर्न नहीं करें, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास वो जीपीएस है। वो बोलता है लेफ्ट तो हम लेफ्ट जाते, वो बोलता है राइट तो हम राइट जाते, वो बोलता है यहां ट्रैफिक जाम है आप दूसरा रास्ता रहो, हम उसका कहना मानते हैं और हम वहां जाते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जीवन में भी एक होना चाहिए गाइडिंग कंपस, जो एक सेकेंड में मुझे बोले ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। होना चाहिए गाइडिंग कंपस या नहीं होना चाहिए कंपस? होना चाहिए कंपस। अगर वो गाइडिंग कंपस हमारे पास होगा तो निर्णय लेने में कितना टाइम लगेगा? निर्णय लेने में कितना टाइम लगेगा? वन सेकंड। और वो गाइडिंग कंपस है क्या ये कर्म श्रेष्ठ है तो करना है, और अगर ये कर्म सही नहीं, तो सारी दुनिया भी कर रही हो तो नहीं करना है, क्योंकि दुनिया कर रही है उनके पास परिणाम आएगा, मैं आत्मा करूंगी तो मेरे पास परिणाम आएगा। हर कर्म का परिणाम आना ही आना है, हर कर्म का परिणाम आना ही आना है। इसीलिए ये बाहर के लेबल और डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अब अगर किसी दिन मुझे एक बहुत अच्छा नया लेबल मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने कर्म में छोटी सी गफलत करनी है सिर्फ, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेबल बहुत अच्छा मिलने वाला है उसके बाद, लेकिन कर्म में छोटा सा कुछ करना है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम सब तो देखते ही हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आप सब सबसे ज्यादा देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना सारा दिन क्या 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 हो रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, इतना कुछ हो रहा है, तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ? किसी के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक उस आत्मा का एक उसके पीछे कोई कर्म नहीं है। भगवान ऊपर से बैठकर नहीं डिसाइड करता है कि इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए। भगवान अगर हमारा भाग्य लिख रहा हो तो हम सबका भाग्य कैसा होगा? परफेक्ट होगा। भगवान लिखेगा क्या? बीमारी, मृत्यु, ये भगवान लिखेगा? भगवान लिखेगा एक बच्चा अभी मोटरसाइकिल पर बाहर गया, एक्सीडेंट हुआ, ये भगवान लिखेगा ऐसा भाग्य? भगवान नहीं लिखता है। ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? मेरे कर्म और मेरे परिणाम। तो जब हमें ये हर रोज याद रहेगा कि खुशी, सुख, प्यार मेरे कर्मों से आता है, मेरे लेबल से नहीं। धन मेरे लेबल से आता है, और धन से सामान आता है, सामान से शरीर को आराम मिलता है, लेकिन मन का सुकून, शरीर का स्वास्थ्य धन से इलाज किया जा सकते हैं, लेकिन धन से स्वास्थ्य नहीं आता है। धन से सामान खरीदा जा सकता है, धन से रिश्ते नहीं बन सकते हैं। ये सारी चीजें जो धन से खरीदी जा सकती हैं, वो सिर्फ शरीर को आराम देती है। सारी चीजें जो कर्मों से कमाई जाती है, वो आत्मा को सुकून देती है। तो कितना देर लगाना चाहिए डिसीजन लेने के लिए? कितनी देर लगानी चाहिए निर्णय लेने के लिए, ये करें या ये नहीं करें? जितना जितना कलयुग और घोर कलयुग बनता जाएगा, ये कंपस को पकड़ के रखना और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी समय आएगा कि हम अकेले खड़े होंगे और सारी दूसरी तरफ होंगे, और हमें अकेले सही होने का निर्णय लेना पड़ेगा। ये भी आएगा समय, और ऐसा भी समय आएगा कि लेबल मिलना तो दूर, लेबल छूट भी सकता है हमारा, लेकिन कर्म गफलत में जाने नहीं चाहिए। जिसने उस कंपस को फिर पकड़ के रखा ना, तो उसके जीवन में हमेशा हमेशा सुकून होगा। सुकून होगा तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, परिवार एकजुट रहेगा, क्योंकि उस घर में धन सही कर्मों से आएगा। कलयुग कलयुग इसलिए बना है क्योंकि कलयुग में लोगों की प्रायोरिटी ये नहीं है कैसे कमाते हैं, लोगों की प्रायोरिटी है कितना कमाते हैं। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कितना कमाते या कैसे कमाते? कितना कमाते या कैसे कमाते? कौन पूछता है आजकल कैसे कमाते हो? सब पूछते कितना कमाते हो, कितना कमाते हो। आज अगर हम ये कह रहे हैं सो एंड सो नंबर वन इन द कंट्री, नंबर टू, सो एंड सो इस फील्ड में नंबर वन, ये सब इसी चीज पर है कि कैसे अचीव किया है, कितना अचीव किया है, कौन क्राइटेरिया है? कितना या कैसे, क्या इंपॉर्टेंट है? कितना या कैसे, कौन सा इंपॉर्टेंट है? कितना जितना भी है सब छूट जाएगा, कैसे चाहो भी तो पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए निर्णय लेना बहुत आसान होना चाहिए, बहुत आसान होना चाहिए कि मेरे कर्म और संस्कारों में थोड़ी सी भी कभी इधर नीचे गफलत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आत्मा वो शक्ति हूँ जो इस शरीर को चलाती हूँ। सारा दिन मैं आत्मा क्या करती हूँ? तीन काम करती हूँ। क्योंकि कई बार हम कहते क्या आत्मा, देखा तो है नहीं आत्मा, क्या प्रूफ है कि कोई आत्मा है? तो उसको फील करेंगे तो पता चल जाएगा कि आत्मा है। मैं आत्मा शक्ति हूँ, बाकी ये जड़ है, मैटर है। मैं आत्मा तीन चीजें करती हूँ सारा दिन। अब आप ये चेक करना कि ये तीन चीजें सारा दिन हो रही है या नहीं हो रही हैं। सबसे पहली चीज, मैं आत्मा शक्ति सोचती हूँ, मैं सोचने का काम करती हूँ, जिसको हम कहते हैं मन। हमें प्रूफ चाहिए हमारे पास मन है? नहीं, जरूरत है। हम डॉक्टर के पास जाके उसको पूछ सकते हैं कि मुझे ब्रेन दिखाओ, तो वो हमें ब्रेन दिखा सकता है। हम उसको पूछे ये ब्रेन में मन किधर है, वो मन दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मन है। मन क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि मन एनर्जी है, एनर्जी इन आंखों से देखी नहीं जा सकती है। ब्रेन जड़ है। आजकल हम दिमाग और मन में कंफ्यूज कर देते हैं। आप प्रिंट मीडिया में भी देखो, दिमाग और मन को कंफ्यूज कर देते हैं। दिमाग ब्रेन है, मन माइंड है। दिमाग नहीं सोचता है, मन सोचता है। मन संकल्प करता है, वो इंस्ट्रक्शन ब्रेन को जाता है और ब्रेन उस कर्म को शरीर के द्वारा करता है। जैसे एक कंप्यूटर है और एक रोबोट है, एक मशीन है, तो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन से मशीन चल रही है। तो क्या हम ये कहेंगे कंप्यूटर सारा काम कर रहा है? नहीं। कंप्यूटर पे वो कोडिंग की किसने? कंप्यूटर पे वो कोडिंग की किसने? वो एक व्यक्ति है जो कोडिंग कर रहा है। तो तीन चीजें हैं, एक ऑपरेटर, एक व्यक्ति, फिर एक कंप्यूटर और फिर वो मशीन, वो रोबोट। वो रोबोट ये शरीर है। वो कंप्यूटर कौन सा है? वो कंप्यूटर कौन है? वो ब्रेन है जो सारी इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उस रोबोट से काम कराता है। और उस ब्रेन को चलाने वाला, उस कंप्यूटर को चलाने वाली शक्ति कौन है? वो मन, वो मैं आत्मा हूं। आपने एक संकल्प किया, मुझे प्यास लगी है, ठीक है, एक थॉट क्रिएट करो, मुझे प्यास लगी है। जैसे आपने ये संकल्प किया मुझे प्यास लगी है, वो इंस्ट्रक्शन ब्रेन की तरफ जाएगी, ब्रेन उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, मैसेजेस हाथ की तरफ जाएगा, हाथ पानी के ग्लास की तरफ जाएगा और आप पानी पी लेंगे। ये सारा फटाफट से हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट कहां से हुआ? एक थॉट से। और वो थॉट किसने क्रिएट की? मुझ आत्मा ने। तो जब मैं आत्मा संकल्प क्रिएट करती हूँ, उसको मन कहते हैं। हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि हमारे पास एक मन है। दूसरा, मैंने बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर लिए, फिर मुझे उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा थॉट कर्म में लेकर आना है। वो परखने वाली शक्ति कि कौन सा संकल्प सही है कौन सा नहीं, वो परख कर निर्णय लेने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जब कोई गलत कर्म करता है तो हम क्या कहते हैं, इसकी बुद्धि को ताला लग चुका है। ब्रेन को ताला नहीं लगा है, ब्रेन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। किसको ताला लग चुका है? विवेक काम नहीं कर रहा है, बुद्धि सही काम नहीं कर रही है। तो मैं आत्मा जब गलत निर्णय लेती हूँ, बार बार गलत कर्म करती हूँ, तो लोग कहते हैं इसकी बुद्धि को तो ताला लग चुका है। तो वो बुद्धि, निर्णय लेने वाली शक्ति भी मैं आत्मा हूँ। और फिर जो निर्णय मैंने लिया वो इस शरीर के द्वारा कर्म में आएगा। पहली बार किसी ने निर्णय लिया कि मुझे सिगरेट पीनी है, क्योंकि उसके सब दोस्तों ने बोला एक ले ले एक ले ले, कुछ नहीं होगा। तो पहले मन ने संकल्प किए, पीऊं नहीं पीऊं, लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं, निकलेंगे थॉट्स के नहीं कुछ पहले थोड़े दिन के लिए। बुद्धि ने कहा क्या होता है एक बार लेने से, निर्णय हो गया। जैसे ही निर्णय हो गया, उस आत्मा ने इस शरीर के द्वारा उसको कर्म में ले आए। पहली बार कर्म किया कि सिगरेट पी ली, कुछ दिन के बाद टेंशन थी, सबने बोला एक ले ले, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, एग्जाम दिया जाएगा। फिर मन ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो आदत बन जाएगी, मम्मी पापा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। बुद्धि ने बोला ऐसी आदत बनेगी, पिछली बार कोई बनी आदत? नहीं बनी ना, उनको कहां से पता चलेगा, ले जल्दी और अभी अपना एग्जाम दे। फिर मैंने कर्म में लाया। ऐसे तीसरी बार फिर हुआ, 10 बार फिर हुआ, 15 बार फिर हुआ। अगर हर बार बुद्धि निर्णय लेती गई ले लो ले लो ले लो, तो थोड़े दिन के बाद वो हमारा बन जाएगा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया, क्या उसके बाद संकल्प चलते हैं कि लेना है या नहीं लेना है? चलते हैं नहीं चलते? किस किस को सुबह चाय पीने की आदत है? चलो इसी को देखते हैं, ये इजी है। कुछ भी, चाय पीता है कोई, पानी पीता है कोई, नींबू पानी पीता है, लेकिन हम वही कुछ चीजें हैं जो रोज करते हैं, जो हम रोज करते हैं, ये हमारे संस्कार है, हैबिट है। तो पहले दिन से थोड़ी बच्चा चाय पी रहा था, किसी ने कहा चाय पी लो फ्रेश हो जाओगे, एनर्जी बहुत अच्छी आ जाती है, तो हमने कहा चलो हम भी ट्राई करते हैं। पहले मन ऑप्शंस देता है, पियो नहीं पियो, पियो नहीं पियो। बुद्धि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि परखेगी और निर्णय लेगी। तो बुद्धि ही कर्म करने का निर्णय लेती है, और हमने पहली बार चाय पी, अगली बार फिर चाय पी, चाय पी सर दर्द हो रहा था ठीक हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई, हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, फिर हमने अगली बार फिर पी फिर पी फिर पी। अब इतने साल हो गए हैं हम रोज पी रहे हैं, और अब तो अगर एक दिन नहीं पी तो क्या हो जाता है, नहीं भी एक दिन तो क्या हो जाता है, और अब हम ऐसी स्थिति में आकर पहुंचे हम बोलते हैं इसके बिना तो मेरा नहीं चलता है। तो क्या हुआ, तीन स्टेजेस को देख लो, आत्मा क्या कर रही है। फर्स्ट स्टेज संकल्प, दूसरी स्टेज निर्णय बुद्धि, और तीसरी स्टेज कर्म में आया। और कोई भी कर्म कई बार हो गया तो वो बन जाएगा संस्कार, और संस्कार के आधार से हम कहते हैं ये पुण्य आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये धर्म आत्मा है, ये महान आत्मा है। और कोई अगर बहुत गलत काम करता है कहते पाप आत्मा है। पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं बोलते, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बोलते हैं, क्योंकि संस्कार शरीर के नहीं है, संस्कार किसके हैं, आत्मा के हैं। अब चाय पीने की आदत पड़ गई है, क्या ये आदत बदली भी जा सकती है? क्या रोज सुबह उठकर अब हमें सोचना पड़ता है चाय पीऊं नहीं पीऊं, ये डायलॉग चलता है क्या मन के अंदर? नहीं। एक बार कोई चीज संस्कार बन जाती है, पहली दो स्टेजेस बायपास हो जाती है, ना मन रोज सोचता है पीऊं नहीं पीऊं पीऊं नहीं पीऊं, ना बुद्धि को रोज निर्णय लेना पड़ता है कि पीना है नहीं, अब वो बन गया है संस्कार। संस्कार मतलब ऑटो पायलट मोड, अब वो रोज चलेगा वो संस्कार, आपको मन और बुद्धि का रोल उसमें बंद हो चुका है, वो बन गया है संस्कार ऑटो। क्या ये संस्कार बदला जा सकता है? यस नो, बदला जा सकता है नहीं बदला जा सकता है? बदला, अभी हम चाय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो इजी चीज है, फिर हम देखेंगे दूसरे संस्कार, गुस्सा करना चिंता करना, क्या वो संस्कार बदले जा सकते हैं? पहले खाना पीना तो आसान होता ना बदलना, क्या ये संस्कार बदला जा सकता है? तीन फैकल्टी थी, मन बुद्धि संस्कार, अब आप देखो इसको बदलना कैसे है, कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कौन सी स्टेज पर बदलेंगे इसको? क्या आप आज डिसाइड करें आज से मुझे चाय नहीं पीनी तो हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले उस तीन स्टेजेस को फिर से खोलना पड़ता है। पहले मन को ऑप्शंस फिर से क्रिएट करने पड़ते हैं कि अगर चाय नहीं पीनी है तो कल सुबह क्या पीना है? फिर किसी ने आकर कहा आपकी हेल्थ के लिए ना चाय अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत एसिडिटी हो रही है। फिर हम पूछते हैं डॉक्टर को कि ठीक है फिर मुझे क्या पीना चाहिए, तो वो फिर से हमारा माइंड क्या कर रहा है, ऑप्शंस खोल रहा है, जिसने ऑप्शंस खोलना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर वो हमें कहता है आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप थोड़े दिन के लिए ग्रीन टी पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब हमारा मन फिर से खुलता है ऑप्शंस के ऊपर कि अच्छा मैं नींबू पानी नारियल पानी छाछ ग्रीन टी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। अब बुद्धि वो सारे ऑप्शंस को देखेगी परखेगी और उसमें से एक ऑप्शन को पकड़ेगी कि लेट्स से बुद्धि ने कहा मैंने नारियल पानी पीना है। अब जिस दिन पहले दिन बुद्धि ने कहा मैंने नारियल पानी पीना है, इतना आसान तो होने नहीं वाला है, आसपास के लोग भी बोलेंगे चाय नहीं छूटती, काम नहीं होगा तुम्हारा, सिर दर्द होगा, रहने दो ये सारी बातें, ये सब बोलने में आसान है, हमें कुछ दिन के लिए क्या रहना पड़ता है उस निर्णय के ऊपर, क्या रहना पड़ेगा, दृढ़ता। संस्कार परिवर्तन के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अपने नए निर्णय पर थोड़े दिन के लिए दृढ़ता, और फिर हमने कहा नहीं, मैंने तो नारियल पानी पीना है। उस दिन सच्ची में दर्द भी हुआ सर थोड़ा सा, लेकिन जब सर दर्द हुआ हमने गिव अप नहीं किया अपने नए निर्णय के ऊपर। अगले दिन फिर मन ने सोचा आज क्या पीऊं, पीऊं क्या चाय। बुद्धि ने कहा नहीं, कुछ दिन करके देखते हैं। और बुद्धि ने निर्णय लिया आज भी नारियल पानी पीना है। अगले दिन फिर मन ने कहा कल तो आधा मेरा काम ही नहीं हुआ, इतना सर दर्द हो रहा है, आज आधा कप पी लेता हूं। बुद्धि ने कहा नहीं, बस ये हुआ कि हुआ, संस्कार चेंज हो जाएगा। 8, 10, 15, 20 दिन किया, उसके बाद मन ने बोलना बंद कर देना है, क्योंकि नारियल पानी हमारा अब क्या बन जाएगा, संस्कार। संस्कार चेंज किए जा सकते हैं, संस्कार चेंज किए जा सकते हैं, करने चाहिए कुछ संस्कार चेंज। नारियल पानी, चाय, ये तो सब खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन अब हमें चेंज करने हैं अपने कुछ मूल संस्कार। गुस्सा करना जरूरी होता है काम करवाने के लिए? कोई कहना नहीं मान रहा हो तो डांटना पड़ता है उसको? किसी को हमने प्यार से बोला ये काम कर दो, उसने नहीं किया, हमने दूसरी बार फिर से प्यार से बोला ये कर दो, उसने नहीं किया, हमने तीसरी बार थोड़ा जोर से बोला, उसने फटाफट कर दिया। बुद्धि ने क्या निर्णय लिया, कमाल है, प्यार से बोला तो करते नहीं है, जोर से बोला हो गया। बुद्धि ने निर्णय लिया चलो जोर से बोलो। अगली बार हमें देर हो रही थी कुछ करने के लिए, तो हमने सोचा टाइम नहीं है, पहले प्यार से बोलो, फिर प्यार से बोलो, फिर प्यार से बोलो, जोर से बोलो, काम फटाफट हो जाएगा। उसकी अगली बार फिर हमारे पास टाइम नहीं था, फिर तो आजकल वैसे ही हमारे पास कभी टाइम नहीं होता, तो हम जोर से बोलते हैं हमारा काम हो जाता है, और जोर से बोलते काम हुआ, जोर से बोलते काम हुआ, जोर से बोलते काम हुआ, धीरे धीरे वैसा बोलना मेरा क्या बन गया, वैसे बोलना मेरा क्या बन गया, संस्कार। और अब ऐसा संस्कार बना, हम कहते इसके बिना तो काम नहीं होता, वही लाइन है कि चाय के बिना तो मेरा दिन नहीं हो सकता शुरू। अब हम बोलते हैं गुस्से के बिना तो काम नहीं होता, गुस्से के बिना तो लोग काम ही नहीं करते हैं। तो हमने उस संस्कार को क्या बना लिया, अपना संस्कार बना लिया। और सच्ची में बात है गुस्सा करो तो काम फटाफट हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन सिर्फ यही प्रायोरिटी था कि काम फटाफट हो जाते हैं? जितनी बार हम गुस्सा करते हैं आत्मा की शक्ति क्या होगी, आत्मा की शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? शरीर का स्वास्थ्य क्या होगा, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऐसे रखना एक मिनट दोनों हाथ, ये वो हैं, ये हम हैं, हम उनको गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको डांट रहे हैं। किस पर ज्यादा असर पड़ता है, डांटने वाले पर या डांट खाने वाले पर? डांटने वाले पर या डांट खाने वाले पर? असर तो डांट खाने वाले पर होना चाहिए था, डांट तो उसको मिल रही है, डांट तो उसको मिल रही है, तो नुकसान किसका होना चाहिए था, डांट खाने वाले का होना चाहिए, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, डांटने वाले का हो रहा है। पहले यहां क्रोध किया तो यहां से खुशी गायब हुई, फिर वो क्रोध की वाइब्रेशन शरीर तक पहुंची, रोज करते करते उसका असर शरीर पर होने लगा, फिर वो क्रोध की एनर्जी लोगों तक पहुंची, वहां पहुंचते पहुंचते उसका असर रिश्तों पर पड़ने लगा, और फिर वो क्रोध की एनर्जी प्रकृति तक पहुंची, प्रकृति का हालचाल देखो कैसा हो गया है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। हमारा संसार किससे बनता है, संस्कार से बनता है। और दिन में काम करवाने के लिए इतनी बार गुस्सा किया, गुस्सा किया, गुस्सा किया, तो जब घर जाएंगे तो क्या हमारा क्रोध का संस्कार बाहर वेट करेगा हमारी के कल सुबह फिर ये मेरे को अपने बैग में डालेंगे? नहीं, वो मेरा संस्कार मेरे साथ जाएगा। और फिर बच्चे दो बात रिपीट कर दे तो हम उसको डांट के बोलते थे समझ में नहीं आया, पहली बार बोला था समझ में नहीं आया अभी तक, जरूरत नहीं थी उस डांट की, लेकिन वो अब मेरा क्या बन चुका है, अब वो मेरा क्या बन चुका है, संस्कार। फिर हम लोगों को बोलते भी हैं कि मेरा कहने का भाव नहीं था, तुमको तो पता है ना मेरी आदत हो गई है ऐसे बोलने की। कई लोग तो बोलते हैं मेरा वॉल्यूम ही इतना सेट हो गया, अभी मेरा कम नहीं होता वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम चेंज हो चुका है। आप भी ऐसा बोलते हो, अभी आप देखो जब आप परसों यहां से जाओगे आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, करने के नहीं चेंज उसको वॉल्यूम। हाँ, दूसरों का नुकसान कम, किसका नुकसान हो रहा है, मेरा। बट ये हुआ कैसे, चाय पी चाय पी चाय पी, चाय की आदत पड़ गई, थोड़े दिन के लिए क्या पीना है, नारियल पानी, मतलब थोड़े दिन के लिए हर कर्म कैसे करना है। अब कौन से संस्कार सही है कौन से गलत है, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ आगे करते हैं। लेफ्ट हैंड पे हम वो संस्कार रखेंगे जो अनकंफर्टेबल है, डिस्टर्बिंग संस्कार है, और राइट हैंड पे हम वो संस्कार रखेंगे जो मुझे कंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, आपने रखना है और रख कर उस हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो पता चलेगा आपने कौन से वाले हाथ पर रखा। और रूल ऑफ द गेम ये है कि दूसरों को नहीं देखना है, अगर दूसरों को देखा पक्का आपका निर्णय गलत हो जाएगा। कलयुग में दूसरों को देखकर कर्म नहीं करना, सत्युग में दूसरों को देखकर कर्म कर सकते हैं, लेकिन कलयुग और उसमें भी घोर कलयुग में अगर दूसरों को देखकर कर्म करेंगे तो सही कर्म करने का निर्णय भी ले रहे होंगे ना, दूसरों को देखकर बदल जाएगा। इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। ठीक है, रेडी। स्ट्रेस, तनाव कौन से हाथ पे, कौन से हाथ पे? लेफ्ट। भले पूरी दुनिया बोलती है स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है, तो कौन से हाथ पे जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, अब हम फटाफट से करते जाएंगे, आप बोलते जाना ताकि पता चल जाएगा लेफ्ट या राइट। ओके, स्ट्रेस, गुस्सा, सुख, चिंता, डर, प्यार, स्वमान, अहंकार, ईर्ष्या, कौन सा वाला था? पक्का पक्का पक्का, दूसरे की सफलता में उसको दुआएं देना, राइट। निंदा, लेफ्ट राइट कैसे हो सकता है? निंदा लेफ्ट। चिंता, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हम कहते हैं ना बच्चों को, हम आपसे इतना प्यार करते हैं इसलिए तो चिंता करते हैं आपके, तो चिंता अनकंफर्टेबल एनर्जी है, वो लेफ्ट पे होगा। कंपैरिजन, देखना नहीं उनके कितने लाइक्स आए, मेरे कितने लाइक्स आए, उनके कितने व्यूज आए, मेरे कितने व्यूज आए, देखना नहीं है, देखना नहीं है। मीडिया ने तो कंपैरिजन को एक अलग लेवल पर ही ले लिया पूरा। सबके पास था संस्कार कंपैरिजन का पहले, लेकिन वो इस समय का बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार बन गया, क्योंकि फिगर्स दिख रहे हैं ना सारा दिन, फिगर्स दिखते हैं वो सारा दिन, तो कंपैरिजन नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपटीशन, कंपटीशन बचपन से सीखा, लाइफ इज कंपटीशन। किस किसने राइट पर रखा है? हाँ जी, हेल्दी कंपटीशन भी होता है। अच्छा, अभी देखते हैं। ओके, ईगो, अहंकार, लेफ्ट। अटैचमेंट, अटैचमेंट में ऐसे हो जाता है हाथ सारा, समझ ही नहीं आता किधर रख रहा है। अटैचमेंट कौन सी साइड पे जाएगी? प्यार कौन सी साइड पे जाएगा? देखो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, अटैचमेंट वर्ड में कंफ्यूजन होता है। दो शब्द हैं तो मीनिंग भी दो ही होंगे, दोनों एक ही तो नहीं हो सकते, लेकिन आज समाज ने क्या कर दिया, अटैचमेंट और प्यार वर्ड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है, तो इसलिए हमें लगता है अटैचमेंट मतलब प्यार है। काम, क्रोध, लोभ, चौथा कौन सा है? पांच विकारों में से एक विकार मोह, अटैचमेंट कौन सी साइड पर है? उसका ऑपोजिट है प्यार। अटैचमेंट मतलब हमारे मन की स्थिति दूसरों के मन की स्थिति पर निर्भर होती है, वो दुखी तो हम भी दुखी, वो परेशान तो हम भी नाराज, वो उदास तो हम भी उदास, जीवन ऐसे करेंगे तो पूरा परिवार क्या हो जाता है ऐसे। और डिटैचमेंट, साक्षी दृष्टा, प्यार मतलब आप उदास तो मैं, आप उदास तो मैं, आप परेशान तो मैं, अगर घर में कोई एक उदास हो तो क्या बाकी सब ठीक रह सकते हैं? नहीं रह सकते। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? चार लोग चल रहे थे, एक खड्डा आया सामने, एक जना गिरा उस परिवार में से उस खड्डे में, तो बाकी तीन को क्या करना चाहिए? पक्का पक्का ना? ऐसा तो नहीं हमारा आपसे इतना प्यार है कि आप गिरे तो हम आपके साथ गिरे। फिर से दोनों हाथ रखो, इस लेफ्ट हैंड पे अपने परिवार के किसी एक सदस्य को रखिए जो किसी भी परिस्थितिवश या अपने संस्कारों के वश थोड़ा सा वाइब्रेशन में नीचे जा रहे हैं, शायद एग्जाम का स्ट्रेस हो, चाहे नौकरी का हो, या कोई चिंता करने का संस्कार हो, कुछ भी हो सकता है, या किसी कारणवश अभी दुखी हो। एक को रखना सिर्फ इधर लेफ्ट हैंड पे जो अपनी वाइब्रेशन में थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, उनको देखते हुए ऐसा हम भी अपनी वाइब्रेशन में किधर चले जाते हैं? राइट हैंड पे। हम भी नीचे चले जाते हैं। जब हम भी नीचे चले जाएंगे तो हमारे से उनको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? और जब उनको ये वाली वाइब्रेशन मिलेगी लो, तो वो कहां चले जाएंगे? वो और नीचे चले जाएंगे। जब वो और नीचे चले जाएंगे, उनको ऐसा देखकर हम और नीचे चले जाएंगे, और दोनों मिलके प्यार से किस तरफ जाएंगे? नीचे 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 नीचे। ये कलयुग ऐसे ही बना, नीचे 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 नीचे। और उनको देखकर हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो आज हम शाम के सेशन में देखेंगे। डिटैचमेंट क्या करती है? ऐसे कि अगर वो परेशान है तो हम अपनी शक्ति को क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे। हम और अपने मन की शक्ति को बढ़ाएंगे, ताकि शक्ति बढ़ाकर हम उनको क्या देंगे? शक्ति देंगे। और उनको शक्ति देकर हम उनको भी क्या कर देंगे? ऊपर उठाएंगे। प्यार उसको कहा जाता है। अटैचमेंट कहता है मेरा क्या होगा, प्यार कहता है आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। इवन जो जीवन का अंतिम क्षण होता है ना इस शरीर में, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो परिवार क्या कहता है? अभी हमारा क्या होगा, वो चले गए। अगर आप कभी भी किसी सेंटर पर आएंगे, कोई भी, जब आप जहां अपने सेंटर्स पर वापस जाएंगे ना, किसी भी सेंटर पर जाना और किसी से भी पूछना है, इस पूरे सेंटर पर जो आते हैं उनमें से किसी ने कोई अपने परिवार के सदस्य को खोया है? हर एक का अभ्यास है यहां पर, और वो रोज का इतना अभ्यास होता है कि जिस दिन परिस्थिति आती है उसको करना बहुत सहज हो जाता है, कि अपने बारे में नहीं सोचना है। वो आत्मा अभी अभी शरीर छोड़कर जा रही है, हमें उसको शक्ति देनी है। रो के नहीं भेजना है, दुआओं के साथ भेजना है, शुक्राना के साथ भेजना है, परमात्मा की याद की शक्ति के साथ भेजना है, अपने मन की शांति के साथ भेजना है, और घर को नॉर्मल करके उस आत्मा को निश्चिंत होकर जाने देना है। ये प्यार होता है। लेकिन अटैचमेंट क्या कहता है? उनका मुझे नहीं पता वो किधर गए, लेकिन हम कैसे रहेंगे, ये सोच सोच के रोएंगे रोएंगे, बोलेंगे वापस आओ वापस आओ, आप चले कैसे गए, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, आपको वापस आना ही पड़ेगा। आत्मा आगे जा रही है और हम उसको क्या बोल रहे हैं? आप कैसे जा सकते हो, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, वापिस आओ, हम तो अभी रह ही नहीं सकेंगे, हम तो कुछ खाना ही नहीं खाएंगे। आपको क्या लगता है उस आत्मा की क्या स्थिति होगी जो आगे जा रही है? क्या होगी स्थिति? एक सेकंड अपने आप को वापस इधर उंगली रखो और ये बोलो मैं आत्मा यहां से निकल कर गई। अब वहां से पीछे अपने परिवार को देखो, आगे निकलो और मुड़ के पीछे अपने परिवार को देखो। कैसा परिवार देखना चाहेंगे पीछे? कैसे देखना चाहेंगे? सब उथल पुथल हुआ हुआ है ये देखना चाहेंगे? कोई खाना नहीं खा रहा ये देखना चाहेंगे? रो रो के बेहाल हो चुके हैं ये देखना चाहेंगे? और अगर ये दिख गया तो क्या आगे जा पाएंगे? ये होता है प्यार। प्यार मतलब उस आत्मा की जर्नी को अच्छा बनाने के लिए हम किसको ठीक करेंगे? हम फटाफट से खुद को ठीक करेंगे। लेकिन मोह क्या कहता है? नहीं, मैं आपके बिना जी ही नहीं सकती। तो मैं आत्मा हूं ये जानना इतना इंपॉर्टेंट है कि जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, शरीर से जाने का तरीका बदल जाता है, और शरीर से दूसरे जो जा रहे हैं उनको जाने देने का तरीका बदल जाता है। हर एस्पेक्ट पे वर्क करता है, क्योंकि हमें याद रहता है मैं आत्मा हूं। तो तीन चीजें मैं आत्मा कर रही हूं, मन बुद्धि संस्कार। हर आत्मा के पांच प्रकार के संस्कार होते हैं। ये पांच प्रकार के संस्कार याद होंगे तो हमें खुद को समझना और दूसरों को समझना बहुत आसान हो सकता है। एक जैसे एक सीडी है, उस पे पांच फोल्डर है, तो पांच प्रकार के संस्कार है। पहला प्रकार का संस्कार, जो बहुत बड़ा सेट ऑफ संस्कार है, जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्म से लेकर आती हूं, जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्म से लेकर आती हूं। भाई साहब, एज कितनी है आपकी? एक सेकंड, खड़े हो जाइएगा, सिर्फ एक सेकंड। सब अपने आप को उनकी जगह पर रखें। एज कितनी है? 56। 56 किसकी एज है? हाँ, चेंज हो गई ना वोकैबुलरी। 56 किसकी एज है? इस शरीर की आयु 56 है। 56 से पहले ये कहां थे? एक और शरीर में। उस शरीर में 100 साल, उससे पहले कहां थे? एक और शरीर में। उस शरीर में 100 साल, इसके बाद कहां होंगे? एक और शरीर में। उस शरीर में 100 साल, एक लंबी जर्नी आत्मा की चल रही है। और हर शरीर में नया परिवार, नया शहर, नया वातावरण, नई परिस्थितियां, नए संस्कार। फिर शरीर छोड़ा, वो संस्कार अपने साथ ले, फिर शरीर छोड़ा, अपने साथ ले। आज जब हम इस शरीर में हैं, तो हम बहुत सारे संस्कार अपने पीछे से लेकर आए हैं। तो आगे से आपको कोई पूछेगा ना, आपकी एज कितने? बोलना, मेरे शरीर की एज 56। मैं आत्मा की एज? आत्मा की एज वो सोल तो जर्नी पे है, तो एज लेस, क्योंकि इटर्नल है ना। एज तो उसकी होती है जो शुरू हुआ और खत्म हुआ। हम कहते हैं ना, टेबल कितना चलेगी, तो कोई कहे 10 साल 20 साल, उतनी एज है उस टेबल की, क्योंकि उसके बाद ये फिनिश्ड है टेबल। शरीर कितने साल चलेगा? 100 साल 120 साल, और कितना चलेगा उसके बाद? फिनिश्ड। मैं आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी, मेरी कोई एज नहीं है, आई एम इटर्नल। शुक्रिया। तो पहला फोल्डर इधर देख लो, मैं आत्मा अनेक जन्मों से संस्कार लेकर आई हूं। दूसरा फोल्डर संस्कारों का, जो मुझ आत्मा को मेरे प्रेजेंट परिवार से मिलता है। एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ संस्कार होता है गर्भ संस्कार। मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश करती हूं, और जो मेरा नया परिवार है उसमें भी स्पेशली जो माता पिता है, और या अगर वो ज्वाइंट फैमिली में है तो सबका ही बहुत असर पड़ता है। उस घर में सब कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या माहौल है, क्या वातावरण है, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, गर्भ में बैठी हुई आत्मा वो सारा कुछ अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसना कहां सीखा? निकलना नहीं पता, क्योंकि सुना नहीं। ये हमें सिखाने के लिए होता है कि गर्भ में हर आत्मा सब कुछ कैच कर रही है। वो 9 महीने एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि उस महीनों में जब वो आत्मा गर्भ में है, उस शरीर से अटैच्ड नहीं है, तो उसकी ग्रहण करने की शक्ति, अब्सॉर्ब करने की शक्ति, तो स्पेशली जो माता होती है, माता पिता दोनों का रोल है, लेकिन फिर भी जो माँ है, सारा दिन में क्या सोचती है। अगर माँ के अंदर डर का संस्कार है, अगर उसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसका वजह से उसको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, एक आधी बार नहीं, लेकिन वो 7-8 महीने में बहुत बार डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, वो बच्चे के अंदर डर का संस्कार आएगा। कभी भी अगर अपना कोई संस्कार फिगर आउट करना है ना, अपनी माता के पास जाओ और पूछो, जब मैं आपके गर्भ में था तो जीवन का क्या हालचाल था, क्या चल रहा था। इसलिए आप देखो, दो बच्चे जब आते हैं, दोनों के समय में घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, और घर की परिस्थितियां जब अलग होती हैं तो माता पिता की मनोस्थिति अलग होती है, तो बच्चे के संस्कारों पर प्रभाव आता है। गर्भ संस्कार एक बहुत पावरफुल चीज है। पहले जब हम गर्भ में थे तो हमारी माओं को क्या सिखाया जाता था? देवी देवताओं के चित्र रखो, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, यही सिखाते थे ना, तब जाके हम पैदा हुए। अब आजकल की मम्माएं क्या देख रही हैं सारा दिन? क्या देख रही हैं, क्या सुन रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, और फिर हम कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे कैसे हो गए हैं? संस्कार, संस्कार। फिर हम कहते हैं ये बच्चे फोन से इतने अडिक्टेड क्यों हैं? ये फोन से अडिक्टेड तो गर्भ में ही हो गए थे। ये गर्भ में ही हो गए थे। आपको मीडिया की पावर को यूज करके हर एक तक पहुंचाओ कि अगर उस 9 महीने में विशेष ध्यान रख लिया ना, आगे की बहुत सारी मेहनत से बच जाएंगे, बच जाएंगे उस समय। लेकिन उस समय ऐसे 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 अगर वो पेरेंट है तो वो बच्चा भी ऐसे 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 ही करेगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं रोग। तो सेकंड फोल्डर ऑफ संस्कार है परिवार से मिले हुए संस्कार, और उसमें है गर्भ संस्कार भी। तीसरा फोल्डर संघ का रंग, संघ का रंग, हम कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से मोहल्ले में, कौन से स्कूल में, कौन से हमारे दोस्त, संघ का रंग। और आजकल सबसे बड़ा संघ का रंग कौन है, आजकल सबसे बड़ा संघ का कौन रंग कौन है, कंटेंट मीडिया। इसीलिए आपकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आप हर एक आत्मा पर एक पूरा फोल्डर ऑफ संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, संघ का रंग। आप सिर्फ अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, आप सृष्टि की हर आत्मा के अंदर एक बहुत बड़ा फोल्डर ऑफ संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, संघ का रंग। क्योंकि अभी दोस्त कम, फोन ज्यादा है साथ में, तो सबसे ज्यादा रंग किसका लगने वाला है, कंटेंट का रंग। तो पहला था फोल्डर पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा था फोल्डर परिवार से मिले संस्कार, तीसरा था फोल्डर एनवायरमेंट संघ का रंग, चौथा फोल्डर। इन तीनों में मेरे पास कोई भी संस्कार हो, मैं आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से संस्कार को चेंज कर सकती हूं। विल पावर, विल पावर, इच्छा शक्ति, वो है चौथा फोल्डर। और पांचवा फोल्डर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। ये एक ही फोल्डर है जो हम सबके पास सेम है, बाकी चार फोल्डर हम सबके अलग अलग हैं। एक मिनट अपनी आंख बंद कीजिए और अपने परिवार को देखिए, उनके कई संस्कार हैं जो हमें समझ नहीं आते, ये ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, क्योंकि वो पूर्व जन्म से आए हुए संस्कार हैं। उनको भी नहीं पता कि उनके पास वो संस्कार क्यों है, प्रश्न नहीं उठाना ये ऐसे क्यों है, स्वीकार करना कि ये संस्कार को लेकर आए थे और आज हम इनको एक नया संस्कार बनाने में सहयोग देंगे। लेकिन नया संस्कार बनाने में सहयोग देने के लिए जो पुराने संस्कार वो लेकर आए हैं उसके ऊपर प्रश्नचित्त नहीं करना है, ऐसे क्यों है, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो। किसी को पानी से डर लगता है, अब उसके माता पिता तो नेशनल लेवल स्विमर है, तो जब वो बच्चा गर्भ में था तब से ही वो माता पिता क्या सोच रहे होंगे, हमने अपने बच्चे को क्या बनाना, बोलेंगे हम तो नेशनल लेवल पे इसको ओलंपिक लेवल तक लेके जाना है। जब वो बच्चा 3 साल का हुआ तो उसको स्विमिंग पूल तक लेके गए तो वो डर के भाग गया वहां से, तो माता पिता तो हो गए परेशान कि ये पानी से डरता है हमारा बच्चा, मेरा बच्चा होकर पानी से डरता है, तो चिंता भी होती है, गुस्सा भी आता है, आसपास के लोग मजाक भी उड़ाते, डरपोक पानी से डरता है, सबके मन पे बहुत प्रश्न 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 है, ये ऐसा क्यों डरता है। धीरे से आके कोई कहता है, आपको याद है 4 साल पहले उस शहर में बाढ़ आई थी, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा था उस शहर में जब वो बाढ़ आई थी, कितनी बाढ़ आई थी, कितना नुकसान हुआ था, आपको याद है वो बाढ़ आई थी, तो माता पिता कहते हाँ हाँ याद है वो बाढ़ आई थी, तो बोलते ये आत्मा ना वो बाढ़ में शरीर छोड़ा था, उस समय जब इसने शरीर छोड़ा था ना इसके हाथ से इसका परिवार छूट गया था, इसका सब कुछ घर उस समय इसकी आंखों के सामने खत्म हो गया था, और सब कुछ देखते हुए अपने हाथ से अपने बच्चे को खोते हुए देखते हुए ये आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो ये आत्मा के ऊपर क्या रिकॉर्डेड है, पानी इज इक्वल टू, पानी इज इक्वल टू सब कुछ खोना। तो वो आत्मा को पानी अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन वो आत्मा को भी नहीं पता उसने वो सब देखा था, लेकिन रिकॉर्ड हो गया यहां पर। तो कभी भी किसी का संस्कार नहीं समझ में आता, ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, याद रखना है पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आए हैं। हमें उसको स्वीकार करना है, उसके ऊपर प्रश्नचित नहीं करना है, ना गुस्सा करना, ना चिंता करना, ना मजाक उड़ाना। हमें चौथी चीज करनी है, स्वीकार करके उनको नया संस्कार बनाने का सहयोग देना। पानी से डर तो समझ में आता है, किसी किसी को विश्वास करने से डर लगता है, होता है ना, कितना भी अच्छा काम कर लो वो विश्वास नहीं कर पाते, वो शक करने का संस्कार होता है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने कभी ना कभी कहीं विश्वास किया था, बहुत बड़ा धोखा मिला, तो आत्मा पे क्या रिकॉर्ड हो गया, विश्वास इज इक्वल टू दर्द। तो ये बहुत सारे संस्कार हमारे पास, आज अगर आप अपनी लिस्ट बनाइए, ये होमवर्क जरूर करना चाहिए, मेरे पास कौन कौन से संस्कार हैं, बहुत अच्छे वाले संस्कार और कुछ जो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि जब मुझे ध्यान आएगा ये मेरा अनकंफर्टेबल है तो हम उसको चेंज करेंगे। मेरा संसार मेरे संस्कारों से बनता है, मेरा संसार मतलब मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा काम कारोबार, मेरा घर का माहौल मेरे संस्कारों से बनता है और संस्कार बदले जा सकते हैं। और राजयोग संस्कार बदलने की विधि है। तो पांचवा फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और पांचवा फोल्डर है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। जैसे ये कपड़ा वाइट है, सफेद है, इसका ओरिजिनल रंग सफेद है, सुबह से रात तक इसको पहने रखा, ट्रैवल भी किया, रसोई में खाना भी बनाया, गार्डन में गए वहां भी कुछ काम किया, गाड़ी खराब हुई उसको भी खोल के देख लिया, सब कुछ इस सफेद कपड़े को पहनते हुए किया, तो हो सकता है रात तक इसके ऊपर थोड़ा सा क्या लग जाए, लग सकते हैं दाग या नहीं लग सकते हैं? लेकिन जब वो दाग लगेगा हमें ये याद रहेगा ये दाग है, ये इसका रंग नहीं है। कोई कहेगा अरे ये काले रंग का डिजाइन है, कहेंगे नहीं नहीं ये काला रंग तो सिर्फ दाग है, ये तो वाइट है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी, ओरिजिनल कलर वाइट, वाइट मतलब रंग तो कोई नहीं होता आत्मा का, ओरिजिनल प्योर पवित्रता, लेकिन इतने शरीर, इतनी परिस्थितियां, इतने माता पिता, इतना संघ का रंग, मुझ पर लगे दाग, अहंकार, गुस्सा, चिंता, निंदा, ईर्ष्या, कंपैरिजन, कंपटीशन, सब कुछ है दाग। ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल कलर नहीं है। मुझ आत्मा के ओरिजिनल कलर है सात संस्कार, जिसके लिए कहा जाता है सतो गुणी आत्मा। सतो गुणी आत्मा, वो सात संस्कार हर एक को याद रखने चाहिए, क्योंकि वो सात संस्कार ही मेरे संस्कार हैं, बाकी संस्कार ऊपर से लगे हुए दाग हैं और हर दाग मिटाया जा सकता है। तो वो सात संस्कार हैं, पहला पवित्रता, मैं आत्मा क्या हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता अर्थात निस्वार्थ प्योर। दूसरा संस्कार है शांति, शांति चाहिए नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलिए पहला संस्कार, मैं पवित्र आत्मा हूं। जितनी ये बार बार बोलेंगे हम अगले कई दिनों तक रोज बोलेंगे, बोलकर वो जो संस्कार पीछे मर्ज्ड हो गया है उसको किधर करेंगे, आगे लेकर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। परिस्थिति आएगी, मेरे पास दो संस्कार है, शांति का भी है और गुस्से का भी है। शांति चाहिए नहीं, शांति लानी नहीं है, दोनों है। जैसे आपके फोन पे दो गाने हैं, परिस्थिति आएगी आप चूज करेंगे ना दोनों में से कौन सा गाना बजाना है, जैसा मौका वैसा गाना। अब हम कहते बात ही ऐसी थी तो गुस्सा किया, लेकिन वो गाने ने तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। अब परिस्थिति फिर आएगी, लेकिन इस बार हमने कौन सा गाना बजाना है, कौन सा गाना बजाना है, हमने शांति के संस्कार को यूज करना है। शांति का संस्कार बनाना नहीं है, शांति का संस्कार है, उसको सिर्फ कर्म में लेकर आना है। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। चौथा, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। खुशी चाहिए नहीं, खुशी मेरा संस्कार है। तो चार कौन से हुए? पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख। पांचवा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार मेरा संस्कार है। ऐसे नहीं, प्यार चाहिए। वो वैसे ही होता है कि सफेद पर इतने सारे दाग लग गए कि याद ही नहीं कि सफेद रंग था, हमने कहा जरा व्हाइट कलर देना, व्हाइट कलर चाहिए नहीं, व्हाइट कलर मैं हूं। तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। नेक्स्ट है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, विजडम, नॉलेज। इसीलिए जब हमारी विजडम जवाब देती है, वो आंसर हमेशा राइट होता है। और लास्ट सातवा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ब्लिस, सत चित्त आनंद, आनंद मेरा संस्कार है। एक बार रिपीट करेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, फिर अगला क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, और मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं सतो गुणी आत्मा हूं। अब सामने लेकर आइए पांच फोल्डर, जैसे कि पांच फोल्डर अलग अलग गाने, पूर्व जन्म से आए गाने, परिवार से मिले गाने, संघ के रंग से बने हुए गाने, विल पावर इच्छा शक्ति से क्रिएट किए हुए गाने, और पांचवें फोल्डर में मुझ आत्मा के मूल सात गाने। हर एक आत्मा जो इस सृष्टि पर है, हर एक के पहले चार फोल्डर अलग अलग हैं, लेकिन पांचवा फोल्डर हर एक का सेम है। सिर्फ हुआ क्या, कलयुग में आते आते मुझे भूल गया कि ये मेरे संस्कार हैं, क्योंकि वो दाग इतने हावी हो गए थे कि हम इन्हीं सातों संस्कारों को आज बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं। और जितना बाहर ढूंढ रहे हैं, उतना वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, कम, क्योंकि उसको बाहर ढूंढने के लिए गुस्सा भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, नफरत भी कर रहे हैं। इसीलिए कोई युद्ध भी करता है ना, तो उसको पूछो आपको चाहिए क्या, क्यों युद्ध करते हैं, कहते हमारे को हमारे देश में शांति चाहिए। कोई शांति के लिए युद्ध कर रहा है, कोई पावर के लिए युद्ध कर रहा है, लेकिन वो इन सातों चीजों के लिए ही सब कुछ हो रहा है। अगर हम इस सृष्टि पर कोई भी समस्या देख लें, एंड कोई भी मतलब कोई भी, वो कोई भी हर समस्या इन्हीं सातों संस्कारों के अनुभव की कमी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, प्यार, ज्ञान, आनंद, आत्मा के मूल संस्कार। काम विकार क्यों इतना बढ़ गया? पवित्रता के संस्कार के अनुभव की कमी। तनाव क्यों इतना कम बढ़ गया? शांति के संस्कार के अनुभव की कमी। ईर्ष्या क्यों बढ़ गई? सब एक दूसरे से आगे क्यों जाना चाहते हैं? खुशी के लिए आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि सुख के संस्कार के अनुभूति की कमी। प्यार दूसरों से मांग रहे हैं, कहते मिला नहीं तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। आज हमारे पास जितने भी कपल्स आते हैं जो अलग रहने का सोचते हैं, उनको पूछो भाई क्यों अलग होना है, आपके बच्चे भी हैं, आप क्यों अलग होना चाहते हैं? कहते मुझे कुछ नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, क्योंकि वो रिश्ते में किस लिए गए थे? प्यार देने के लिए रिश्ते में जाना था, कहते मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। तो इसलिए अब राजयोग क्या करता है, मेडिटेशन में जो हम करेंगे आज से, मेडिटेशन में ये जो सात गाने हैं इनको इमर्ज करना। जैसे रसोई में एक शेल्फ होता है ना, उस शेल्फ पे वो छोटी छोटी शीशियां होती हैं जो हर सब्जी में जाती हैं, राइट? तो सपोज एक शीशे में लाल मिर्ची पड़ी है, क्योंकि हमारे घर में सब खाते हैं, डलती जाती है, डलती जाती है। अब डॉक्टर ने बोला, नहीं जी, आपके घर वालों को लाल मिर्ची बंद करनी पड़ेगी, अब सूट नहीं कर रही आपको। तो हमें लाल मिर्ची कहाँ करनी पड़ेगी? पीछे करनी पड़ेगी। और लाल मिर्ची की जगह मुझे क्या डालना है? उस शीशे को आगे लाना पड़ेगा। तो राजयोग वो विधि है कि जो लेफ्ट हैंड पे संस्कार थे वो मर्ज्ड होंगे और जो पीछे चले गए संस्कार थे वो वापस इमर्ज्ड होंगे। तो उसकी सिंपल विधि हम अभी करेंगे। वैसे जब हम यहां से वापस जाएंगे तो मैं आत्मा हूं, जिनसे मैं बात कर रही हूं वो भी आत्मा है, ये फील होने से कोई डिफरेंस आएगा क्या कर्मों में? कि मैं रोल हूं, शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, उससे कोई डिफरेंस आता है क्या? आएगा डिफरेंस? नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट आंख बंद करो, देखते हैं डिफरेंस कैसे आता है। एक मिनट आंख बंद करो और किसी बहुत बड़े मीडिया हाउस के गेट पर पहुंचाओ, जहां आपका बहुत समय से मन था जाने का, वहां कोई बहुत बड़ा चैनल है, पेपर है, जो भी है, वहां के ऑफिस के गेट पर पहुंचाओ। वो गेट पर एक भैया खड़ा है जो गेट खोलता है आपके लिए। वो आपसे बड़े प्यार से नमस्ते करता है, सल्यूट भी करता है, आपके लिए दरवाजा खोलता है। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं? फिर आप उस कंपनी के ऑफिस के अंदर जाइए, वहां रिसेप्शन पर एक बहन खड़ी है, झुककर प्यार से आपका स्वागत करती है। आप उसके साथ कैसे बात करते हैं? और फिर आप पहली मंजिल पर जाइए, उस कंपनी का मीडिया हाउस का एक मैनेजर है, वो आपसे मिलता है, वो आपको सहयोग देता है, आप उससे कैसे बात करते हैं? और फिर आप लिफ्ट में खड़े होकर उस ऑफिस की सबसे ऊंची मंजिल पर जाइए, जहां उस बहुत बड़े मीडिया हाउस का बहुत सीनियर कोई चेयरपर्सन MD वो बैठा है, आप उनसे मिलते हैं। आप उनसे बात कैसे करते हैं? फिर से रिवाइंड कर लीजिए। गेट पर एक भैया था, रिसेप्शन पर एक बहन खड़ी थी, फर्स्ट फ्लोर पे उस कंपनी का मैनेजर था और फोर्थ फ्लोर पर जाकर उस कंपनी का MD उस मीडिया हाउस का मालिक है। 4 मिनट में 4 लोगों को मिल लिए, 4 मिनट में 4 लोगों को मिल लिए। क्या चारों के साथ हमारा बात करने का तरीका एक जैसा था? आंखें खोलिए। क्या चारों के साथ हमारा बात करने का तरीका एक जैसा था? अलग अलग था। चारों में से मेरी ओरिजिनल नेचर कौन सी है? इन चारों में से मेरा नेचुरल संस्कार कौन सा है? सिक्योरिटी गेट पर, रिसेप्शन पर, फर्स्ट फ्लोर पर या फोर्थ फ्लोर पर, मेरी नेचर कौन सी है? क्योंकि 4 बार बदली ना, कौन सी है? जी जो हमारी नेचर होती है ना, वो 4 मिनट में एक एक बार बदलती नहीं है। ऐसे हम चारों के साथ अलग तरह से क्यों बात की? हम किससे बात कर रहे थे? क्यों हम 4 बार बदले? हम किससे बात कर रहे थे? हम उस लेबल से बात कर रहे थे। और कौन बात कर रहा था? मैं लेबल, उस लेबल से बात कर रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड मुझसे नीचे है, मैं ऊपर हूं, तो मेरा बात करने का अलग तरीका था। लेकिन जब मैं ऊपर गई तो वो मालिक का लेबल मुझसे बड़ा है, मेरा छोटा है, तो मेरा वो बहुत एक्स्ट्रा अच्छा। 4 बार बदल गए। ऐसे सारा दिन में कितनी बार बदलते हैं? क्योंकि किससे बात कर रहे हैं? उस डब्बे से, उस स्ट्रिंग से, उस लेबल से बात कर रहे हैं। अब फिर से सिर्फ 10 सेकेंड में इसको फिर से रिवाइंड कीजिए। मैं आत्मा इस ऑफिस में जा रहे हूं, रोल अलग अलग है, रोल अलग अलग है। सिर्फ क्या मैं आत्मा इक्वल रिस्पेक्ट चारों के साथ हो सकता है? रिस्पेक्ट, सम्मान, शब्दों में मिठास, क्या चारों के साथ एक जैसा हो सकता है? हो सकता है? चार बार बदलने की जरूरत ना पड़े, हो सकता है? वो है सोल कॉन्शियसनेस, और पहले वाला था रोल कॉन्शियसनेस। जो भैया गेट पर है ना, वो आपके लिए गेट खोलेगा, आपको उतर के उसके लिए गेट नहीं खोलना है, वो उसका रोल है। लेकिन आत्मा आत्मा से मिल रही है, सिर्फ अंदर ये सोच नहीं होनी चाहिए ये तो छोटा है, मैं तो ऊंचा हूं। ये बहुत रिकॉर्डेड कॉन्शियसनेस है हमारी, तो हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि, हमारे हाव भाव, हमारे वाइब्रेशन बदल जाते हैं। और जब तक हम चौथी मंजिल पहुंचते हैं, हम कहते मैं बहुत छोटा हूं, ये तो बहुत बड़े हैं। रोल अलग अलग है, आत्मा छोटी और बड़ी नहीं होती है। आत्मा कैसी होती है? इक्वल। रिगार्ड देना है, रोल के लिए देना है। वो सिक्योरिटी पे जो भैया था, उसने आपको रिगार्ड दिया, आपके लिए गेट खोला। जब आप फोर्थ फ्लोर पे पहुंचेंगे, आप उस मालिक को रिगार्ड दीजिए, आप उनके लिए दरवाजा खोलिए, आप उनके लिए रिगार्ड बाह्य होता है, सम्मान आंतरिक होता है। रिगार्ड रोल के अनुसार दीजिए। कोई किसी के लिए दरवाजा खोलेगा, कोई किसी को कुर्सी देगा, कोई किसी के पांव छुएगा, दूसरा नहीं छुएगा क्योंकि दूसरा उम्र में बड़ा है। ये सब बाह्य है और ये समाज का रिगार्ड है, और ये रिगार्ड मेंटेन रखना है। लेकिन रिस्पेक्ट चारों के लिए, रिस्पेक्ट चारों के लिए, वो इक्वल, वो है सोल कॉन्शियसनेस। रिगार्ड फिजिकल होता है, सम्मान आंतरिक होता है। हम सब इक्वल हैं। क्या है? हम सब इक्वल हैं। हम सब ने एक दूसरे से अपने आप को बहुत अलग अलग कर दिया है, सिर्फ इन चीजों के ऊपर, चाहे वो रोल के ऊपर, चाहे वो उम्र के ऊपर, चाहे वो रिश्तों के ऊपर, चाहे आज धर्म के नाम पर, मैं ये धर्म हूं, वो आप हो, दूसरा धर्म है, अलग हो गए। हर धर्म ने तो मैं आत्मा हूं यही सिखाया था, और हर धर्म ने सिखाया था हम तो इक्वल हैं, हम तो एकजुट हैं। तो हमने उसमें कर दिया, नहीं, मैं रिलीजन नहीं होती हूं, ये मेरा रिलीजन है, और मेरा रिलीजन एक्चुअली मुझे आत्मा का धर्म सिखा रहा है। हर धर्म ने क्या सिखाया? शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, आनंद, हर धर्म ने सिखाया। क्योंकि हर धर्म स्थापक, हर वो पवित्र आत्मा जो इस सृष्टि पर आई, वो आत्मा का धर्म सिखाने के लिए आई थी, वो धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे, धर्म सिखाने के लिए आए थे। आत्मा का धर्म मतलब आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की ड्यूटी। आत्मा का धर्म वो सात धर्म है, पवित्रता, शांति, सुख, पवित्रता, पवित्रता, शांति, सुख, शक्ति, आनंद, प्यार और ज्ञान। ये सात आत्मा के धर्म है। लेकिन हमने कहा मैं ये धर्म, आप वो धर्म, और हम अलग हो गए, और आज हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम धर्म के नाम से एक दूसरे के साथ युद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अपने निज धर्म से बहुत दूर हो जाती है। तो यहां भी एक दूसरे से मिलते हुए, और यहां से जब वापस जाएंगे ना, तब भी हर एक कौन है? आत्मा है। और हम सब कैसे हैं? इक्वल है। रोल अलग है, शरीर अलग है, उम्र शरीर की अलग अलग है, हम सब इक्वल हैं। ना कोई उम्र में छोटा है, शरीर छोटा है। एक छोटा बच्चा होता है, उस पे हाथ भी उठा देते हैं, कहते छोटा तो है, छोटा उसका शरीर है। वो आज 3 साल के शरीर में है, 3 साल पहले वो 100 साल के शरीर में था, हम उसके पैर छू रहे थे। इसीलिए रिस्पेक्ट फॉर एवरी सोल, रिगार्ड फॉर द रोल। रिगार्ड फॉर द रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है? हमारा अहंकार, और जब अहंकार खत्म होगा, सारे विकार खत्म हो जाते हैं। तो इसको फिर हम प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे। अभी हम 1 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे। सिंपल प्रैक्टिस है। सबसे पहले हम 3 फैकल्टीज को यूज करते हैं आत्मा की मेडिटेशन में। मन संकल्प करेगा, बुद्धि 2 काम करती है, निर्णय भी लेती है और विजुअलाइज भी करती है, और फिर जो हम अनुभव करते हैं वो हमारा संस्कार बनेगा। तो जस्ट विजुअलाइज करेंगे, यहां ब्रिकुटी के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, तिलक इसीलिए लगाया जाता है याद दिलाने के लिए, मैं आत्मा हूं। इसलिए सुबह सुबह तिलक लगा के निकलते, मैं आत्मा काम पे जा रही हूं। मंदिर में जाते हैं, पहले बाहर पर्स उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, बेल्ट उतारते हैं, चमड़े की हर चीज बाहर उतारते हैं, क्योंकि क्या याद दिलाया जा रहा है, क्या बाहर उतारो, ये चमड़ा, इसकी कॉन्शियसनेस। और अंदर जाते ही मंदिर में सबसे पहले क्या किया जाता है, तिलक। तो चमड़े को बाहर उतारो, मैं आत्मा हूं वो तिलक लगाओ, फिर भगवान के दर्शन करो, क्योंकि मैं आत्मा हूं के बिना परम आत्मा से कनेक्शन जोड़ना, इसीलिए। तो विजुअलाइज करेंगे यहां पर ब्रिकुटी के बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। हमें तीनों फैकल्टीज को साथ साथ लेना है। सीधा होकर बैठेंगे और कुछ संकल्प जो सुनेंगे उसको आप मन में दोहराइएगा, लेकिन बुद्धि से मैं आत्मा हूं वो देखते जाना है। मन और बुद्धि जब साथ चलती है तब कॉन्सेंट्रेशन और एकाग्रता होती है। तो जहां हम तिलक लगाते हैं वहां विजुअलाइज कीजिए चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। इस शरीर के मालिक मैं आत्मा हूं, रिपीट करिएगा, इसको दोहराइएगा मन में, अजर अमर अविनाशी शक्ति मैं आत्मा हूं, मेरे कर्म और मेरे संस्कार मेरी पूंजी है जो इस यात्रा पर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे कर्म और मेरे संस्कार। देखते रहिएगा प्रकृति के बीच, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, हर परिस्थिति में शक्तिशाली आत्मा, कुछ भी बात हो जाए शांत और स्थिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, हलचल बाहर है, भाग दौड़ बाहर है, शरीर से मैं भाग रही हूं, शरीर से मैं आत्मा दिन रात काम कर रही हूं, वो मेरा रोल है, कि मैं आत्मा शांत स्थिर वो मेरा संस्कार है। मेरे साथ हर एक जो है अलग अलग व्यवहार अलग अलग संस्कार है उनके, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे हर एक को प्यार और सम्मान की वाइब्रेशन मिलती है, मैं शक्तिशाली आत्मा, हर परिस्थिति में शांत आत्मा, हर आत्मा को प्रेम और सम्मान देने वाली आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूं, हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। यहां से नाश्ते तक हम मौन में चलेंगे और आज हम नाश्ता भी मौन में करेंगे। मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, मौन मन पर भी नियंत्रण लाता है, मौन शब्दों की शक्ति भी बढ़ाता है। हमारे शब्द साधारण नहीं रहते अगर हम अपने शब्दों पर संयम लेकर आते हैं।